एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudavent.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudavent.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से।
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
नरसिंगा फूका जाने वाला है, आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है, आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। शहरत काम न आएगी, ये सब चीजें प्यारे तेरे साथ न जाएगी, दुनिया में तू तन्हा रह जाने वाला है, दुनिया में तू तन्हा रह जाने वाला है। सिंह आपका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है, आखिरी नरसिंह आपका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है।
समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
प्रिय श्रोताओं नमस्कार, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर परमेश्वर का सेवक फिर से आपके सामने परमेश्वर का वचन लेकर आता हूँ। हम परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आइए परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे हमारे सर्वशक्तिमान महान दयालु परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं इस समय, हम तुझसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर, तो हम सबों को आशीष दे, हमारे मन और हृदयों को खोल दे ताकि हम तेरे वचनों को सुने और समझने सके। विशेषकर मेरे संग हो पिता कि मैं तेरा वचन को तेरा पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से तेरे लोगों को बतला सकूं। हर एक श्रोताओं के संग हो पिता कि वे तेरे प्रेम को तेरे वचन को समझने सके, तेरे प्यार को समझने सके और तेरे नज़दीक आने सके। सबों को आशीष दे, इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुना दया से ग्रहण कर, आमीन। अवश्य है कि वह बढ़े, यह मेरा शीर्षक है। विश्वासी इसराइलियों में बहुत से ऐसे लोग थे जो मसीह के आने की बाट जो रहे थे। परमेश्वर अपना प्रतिज्ञा पूरा करता है, वह अपने पुत्र के प्रकट होने से पहले एक भविष्यवक्ता को भेजता है, उसका नाम था यहुना। परमेश्वर ने उसके माता पिता जकरिया और एलिशबा को उनके वृद्धा अवस्था में यह बालक उपहार दिया था। यह परमेश्वर का चुना हुआ सेवक था, यह परमेश्वर के पुत्र के लिए राह तैयार करने वाला था। उसके विषय में हम यशायाह की पुस्तक उसका 40:3 में पढ़ते हैं, किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग चौरस करो। यहुना छोटा से नाजरी था, वह जंगल में रहकर प्रकृति से परमेश्वर का शिक्षा प्राप्त किया। वह लोगों के पास भी समय समय पर जाकर मिलता जुलता था और संसार में जो कुछ हो रहा था उसकी समीक्षा बड़े ध्यान से करता रहता था। एक समय ऐसा हुआ कि संपूर्ण देश में शासकों, याजकों, राजकुमारों से भी बढ़कर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का प्रभाव हो गया। जब यूहन्ना 30 साल का हुआ, परमेश्वर का वचन सुनाने लगा, लोगों को यीशु मसीह के आने का राह तैयार करने लगा। परमेश्वर का पुत्र का प्रकट होने से पहले जब वह लोगों को पश्चाताप का समाचार दे रहा था, बहुत से लोग उसे प्रभावित हुए और बहुत से लोग उसके पीछे होने लगे। यदि उसने अपने आप को मसीह घोषित कर दिया होता और रोम के विरोध में विद्रोह कर दिया होता तो याजक और साधारण जनता उसके पीछे हो लिए होते। इस संसार पर अधिकार जमा लेने वाले शैतान के लिए हर प्रकार से ऐसा वातावरण बन चुका था कि वह बपतिस्मा देने वाले को उभारे, परंतु घटनाएं यह दर्शाती है कि उसकी शक्ति व सामर्थ उसके सामने थी। उसने शैतान की इस चाल को पूर्ण रूप से रद्द कर दिया। जो आकर्षण उस पर केंद्रित हो गया था उसने उसे किसी और की ओर मोड़ दिया। अब उसने देखा कि प्रसिद्धता का बहाव उस पर से हटकर मुक्तिदाता की ओर जा रहा है। एक दिन प्रतिदिन उसके साथ की भीड़ कम होती जा रही है। जब यीशु यरूशलेम से जर्दन के क्षेत्र में आया तो लोग उसको सुनने के लिए उमड़ पड़े। प्रतिदिन उसके शिष्यों में बढ़ोतरी होने लगी। बहुत से लोग तो बपतिस्मा लेने के लिए आए, यद्यपि मसीह स्वयं ने बपतिस्मा नहीं दिया परंतु अपने शिष्यों को इस विधि को संपन्न करने की अनुमति दे दिया था। और इस प्रकार से अपने से आगे चलने वाले के कार्य पर अपनी मुहर लगा दिया। परंतु यूहन्ना के शिष्य लोग यीशु की प्रसिद्धता को बढ़ते हुए देखकर डाह करने लगे। वे लोग उसके कार्यों की बुराई करने के लिए तैयार हो गए और बहुत शीघ्र ही उन्हें अवसर मिल गया। उनके और यहूदियों के बीच एक तकरार उठ खड़ी हुई कि क्या बपतिस्मा आत्मा को पाप से धो देता है। उनकी मान्यता थी कि यूहन्ना के बपतिस्मा में और यीशु के शिष्यों द्वारा दिए जाने वाले बपतिस्मे में अंतर है। बपतिस्मे के समय जो वचन बोले जाते थे उनको लेकर शीघ्र ही मसीह के शिष्यों के साथ उलझ गए और उनसे बपतिस्मा देने के अधिकार के विषय में पूछने लगे। यूहन्ना के चेले उसके पास अपनी शिकायतों को लेकर आए और कहने लगे, हे रब्बी, जो व्यक्ति यर्दन के पार तेरे साथ था और जिसकी तूने गवाही दी है, देख वह बपतिस्मा देता है और सब उसके पास आते हैं। इन शब्दों के माध्यम से शैतान यूहन्ना के ऊपर परीक्षा लाता है। यद्यपि ऐसा लगता है कि यूहन्ना का कार्य अब अपने अंतिम शोर पर पहुंच चुका था, फिर भी अभी यह संभव था कि मसीह के कार्य में वह बाधा डाल दे। यदि वह अपने आप से सहानुभूति रखता और अपने आप को पीछे छूट जाने तथा अपनी असफलता पर व्यथित होता तो वह कलह के बीज को बो सकता था, डा और शत्रुता को बढ़ावा दे सकता था और सुसमाचार के फैलाने में गंभीर रुकावट डाल सकता था। प्राकृतिक रूप से हर मनुष्य की तरह यूहन्ना में भी गलती करने की कमजोरी थी, परंतु ईश्वरीय प्रेम ने उसे बिल्कुल बदल दिया था। वह एक ऐसे वातावरण में जीवन व्यतीत कर रहा था जहां अपस्वार्थ, लालसा और असंतुष्टता का बोलबाला था और इससे भी बढ़कर लोगों को दूषित करने वाला डाह था। अपने शिष्यों की असंतुष्टता के प्रति उसके मन में कोई सहानुभूति नहीं थी, परंतु उसने यह अवश्य दिखाया कि मसीह के साथ उसके क्या संबंध हैं और उसने उसका हर उल्लास के साथ स्वागत किया जिसके मार्ग को तैयार करने के लिए वह भेजा गया था। उसने कहा, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। तुम तो आप ही मेरे गवाह हो। मैंने कहा था, मैं मसीह नहीं परंतु उसके आगे भेजा गया हूँ। जिसकी दुल्हन है वही दुल्हा है, परंतु दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है, दूल्हे के शब्द से बहुत हर्षित होता है। यूहन्ना अपने आप को एक मित्र के रूप में प्रस्तुत करता है जो दो पक्षों के मध्य सगाई की बातचीत का कार्य करते हुए विवाह का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। जब दूल्हे ने अपनी दुल्हन को स्वीकार कर लिया तो मित्र का कार्य पूर्ण हो गया। जिन्हें जोड़ने के लिए वह कार्य कर रहा था उनके मिल जाने से वह अत्यंत प्रसन्न है। इस प्रकार से यूहन्ना को इसलिए भेजा गया था कि वह लोगों को मसीह की ओर आकर्षित करे और इनमें उद्धारकर्ता को सफल होते हुए देखकर वह अति हर्षित होता है तथा कहता है, अब मेरा यह हर्ष पूरा हुआ है, अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। विश्वास के साथ उद्धारकर्ता को देखते हुए यूहन्ना अपने आप को त्याग के शिखर पर पहुंचा दिया। उसने लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के स्थान पर लोगों के विचारों को ऊपर और ऊपर उठाने में, जब तक कि वे परमेश्वर के मेमने पर आकर स्थिर ना हो जाए, प्रयत्न करता रहा। वह अपने आप को केवल एक आवाज, जंगल में पुकारने वाले की आवाज की संज्ञा देता है। अब खुशी के साथ अंधकार में चुपचाप विलीन हो जाना चाहता है ताकि लोगों की नजरें जीवन के प्रकाश की ओर मुड़ जाएं। जो लोग सचमुच में परमेश्वर के बुलाए गए संदेश वाहक हैं, वे कभी भी स्वयं के लिए सम्मान के भूखे नहीं होंगे। मसीह के प्रेम में वे अपने स्वयं के प्रेम को मिटा देंगे। सुसमाचार के महत्वपूर्ण कार्य में कोई भी प्रतिद्वंद्विता बाधक नहीं बनेगी। वे लोग अनुभव करेंगे कि उनका प्रथम कार्य सुसमाचार को फैलाना है, जिस प्रकार से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने किया। देखो, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। वे यीशु को ऊपर उठाएंगे और उसी के साथ मानवता भी ऊपर उठेगी, क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता और जिसका नाम पवित्र है, वह यों कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके भी संग रहता हूँ जो खेदित और नम्र हैं, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूँ। यह हमें यशाया 57:15 में मिलता है। भविष्यवक्ता ने अपने आप को शून्य कर दिया और तब ईश्वरीय प्रकाश से भर दिया गया। जब उसने मुक्तिदाता की महिमा पर दृष्टि की तो उसके मुंह से लगभग वही शब्द निकल पड़े जो निकोदेमस से साक्षात्कार के समय यीशु के मुंह से निकले थे। यूहन्ना ने कहा, जो ऊपर से आता है वह सर्वोत्तम है, जो पृथ्वी से आता है वह पृथ्वी का है और पृथ्वी की ही बातें कहता है, जो स्वर्ग से आता है वह सबसे ऊपर है, जिसे परमेश्वर ने भेजा है वह परमेश्वर की बातें कहता है, क्योंकि वह आत्मा नाप नाप कर नहीं देता। मसीह ने स्वयं कहा, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूँ वैसा न्याय करता हूँ और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ। यूहन्ना 5:30 में हम इसे पाते हैं। उसके विषय में यह घोषित किया गया है, तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा, इस कारण परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तुझे अभिषेक किया। इब्रानियों 1:9। क्योंकि पिता ने उसे आत्मा नाप कर नहीं दिया, इसी प्रकार से उसके विश्वासियों के लिए भी है। हम स्वर्गीय प्रकाश से अपने आप को भर सकते हैं और यह तभी हो सकता है जब हम अपने आप को खाली कर देंगे। जब तक हम अपने प्रत्येक कार्य कलापों में मसीह की इच्छाओं को पूर्ण करने की प्रतिज्ञा नहीं कर लेते, तब तक हम परमेश्वर के चरित्र को पहचान नहीं सकते, मसीह को विश्वास द्वारा ग्रहण नहीं कर सकते। जितने भी लोग ऐसा करते हैं उन्हें बिना नाप के पवित्र आत्मा का दान दिया जाता है। मसीह में ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। तुम उसी में भरपूर हो गए हो जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। इसे हम कुलुसियों 2:9-10 में पाते हैं। यहूना के शिष्यों ने कहा कि भीड़ की भीड़ मसीह के पीछे चली जा रही है, परंतु अंतकरण से शुद्ध विचारों वाले यहूना ने कहा कोई उसकी गवाही ग्रहण नहीं करता, परंतु कुछ लोग ऐसे भी थे जो उसे पापों से उद्धार करने वाले के रूप में ग्रहण करने के लिए तैयार थे, परंतु जिसने उसकी गवाही ग्रहण कर ली उसने इस बात पर छाप दे दी कि परमेश्वर सच्चा है। यहूना 3:33 जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। इसमें किसी तर्क वितर्क की कोई आवश्यकता नहीं है कि मसीह का बपतिस्मा या यहूना का बपतिस्मा पाप से धोकर पाक साफ करता है। यह मसीह का अनुग्रह है जो आत्मा को जीवन देता है। मसीह से अलग हटकर दूसरी सारी विधियों के जैसे ही बपतिस्मा भी वेद की एक रीति रह जाती है। जो पुत्र को नहीं जानता वह जीवन को नहीं देखेगा। मसीह के कार्यों की सफलता को जिसे बपतिस्मा देने वाले ने हर्षित होकर स्वागत किया था उसकी सूचना यरूशलेम में अधिकारियों तक पहुंच गई। याजक और रबी लोग पहले से ही जले भुने बैठे थे जब उन्होंने देखा कि लोग झुंड के झुंड यहूना बपतिस्मा देने वाले की ओर जंगल में चले जा रहे हैं और उनके आराधनालय खाली होते जा रहे हैं। और यहाँ पर तो उससे भी बढ़कर शक्तिशाली व्यक्तित्व अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इज़राइल के सारे अधिकारी और अगुए नहीं चाहते थे कि वे यहूना के साथ मिलकर कहें अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। उन्होंने ठान लिया कि अब उसका और उसके कार्य का अंत करना ही पड़ेगा जो हमारे लोगों को हमसे दूर अपनी ओर खींचे ले जा रहा है। यीशु जानता था कि वे लोग उसके और यहूना के चेलों में विभाजन कराने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देंगे। वह जानता था कि तूफान घुमड़ रहा है जो इस जगत के एक महान भविष्यवक्ता को, जैसा कि आज तक जगत में कोई पैदा नहीं हुआ, हमसे दूर उसे उड़ा ले जाएगा। किसी प्रकार के भ्रम या कला से बचने के लिए मसीह हर अवसर पर टालता रहा और अंततः चुपचाप अपना कार्य रोककर वापस गलील को चला गया। हमें भी सत्य के प्रति निष्ठावान रहते हुए भी ऐसे अवसरों को टाल देना चाहिए जहाँ पर किसी प्रकार की वैमनस्यता या विरोध उठ खड़ा होता है। जहाँ कहीं भी जब कभी भी ऐसी बातें खड़ी हो जाती हैं तो इसका दुष्परिणाम आत्माओं की हानि ही होती है। जब कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही हो जहाँ पर विभाजन की नौबत दिखाई दे रही हो तो हमें यीशु और यहूना बपतिस्मा देने वाले के नमूने का प्रयोग करना चाहिए। यहूना को सुधार करने का अगुआ होने के लिए बुलाया गया था। इस कारण से उसके शिष्य लोग उसके ऊपर ध्यान देकर खतरा उत्पन्न कर रहे थे। उनका सोचना था कि उनके कार्य की सफलता उसके परिश्रम पर निर्भर थी। वे लोग इस बात को भूल रहे थे कि परमेश्वर द्वारा लाया हुआ वह एक माध्यम मात्र था, परंतु केवल यहूना का कार्य ही मसीही कलीसिया की स्थापना नहीं कर सकता था। जब उसने उसे सौंपे हुए कार्य को संपन्न कर दिया उसके बाद दूसरे कार्य को करना आवश्यक था जिसे उसकी गवाही पूरी नहीं कर सकती थी। उसके शिष्यों ने इस बात को नहीं समझा। जब उन्होंने देखा कि मसीह उस कार्य को अपने हाथ में ले रहा है तो वे उससे असंतुष्ट होकर डाह करने लगे। वैसा ही खतरा आज के युग में भी कायम है। परमेश्वर किसी को किसी विशेष कार्य के लिए बुलाता है और उसे वह अपनी सामर्थ के अनुसार संपन्न कर लेता है, तो प्रभु किसी और को बुलाता है ताकि वह उस कार्य को और आगे ले जाए। परंतु यहूना के चेलों जैसे बहुत से लोग सोचने लगते हैं कि सफलता पहले वालों के कार्य पर निर्भर है। लोगों का ध्यान मनुष्य के कार्य पर लग जाता है, जबकि संपूर्ण कार्य परमेश्वर की ओर से होता है। और फिर डाह का जन्म होता है और परमेश्वर के कार्य की हानि होती है। इस प्रकार से जिस व्यक्ति का आदर होता है वह अपने आत्मविश्वास पर गर्व करने लगता है, वह परमेश्वर पर निर्भरता को महसूस नहीं करता। लोगों को सिखाया जाता है कि वे इंसान के मार्गदर्शन पर भरोसा करें और इसका परिणाम यह होता है कि वे गलती कर बैठते हैं और परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। परमेश्वर के कार्यों पर किसी मनुष्य के लेखों या आकृतियों का समावेश नहीं होता है। समय समय पर विभिन्न माध्यमों से जिनके द्वारा परमेश्वर का कार्य भली प्रकार से संपन्न हो सकता है, प्रभु उनका प्रयोग करता है। धन्य है वे जो यह चाह करते हैं कि वे विनम्र बने और यहूना बपतिस्मा देने वाले के साथ मिलकर कहते हैं, अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरी उपासना करते हैं। तू महान है, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने आज हमें यह समय दिया कि हम तेरे वचनों से सुन सके। यह जो तेरे वचन हम सुने उसको हम अपने मन में रखने सके और हम सबों को तेरे इच्छा अनुसार चलने के लिए मदद कर पिता, कि हम अपने आप को नम्र बनाए, हम अपने आप को बड़ा नहीं बनाए, हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करें, उस पर भरोसा रखे और उसी को ऊंचा उठाए। उसी के ऊंचा उठने पर हमारा आशीष है, हमारा सफलता है और हमारा उद्धार है। हमें तेरे नजदीक ला, हमें तेरे प्रेम से भर दे। मेरे हरेक श्रोताओं को तो आशीष दे। इस विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुना ग्रहण कर, आमीन।
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1800833231 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindirsamc@sudadventist.org।
मैं हूं गौरव चौहान
और मैं हूं सारा मंडोरा AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें। तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।